From the Conference Center at Temple Square.
So the Siddiqui Conference Center say here, 180th Priesthood Session, Semi-Annual General Conference, Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, Gahe. Yes, about the near Berke, Hazaro, Sabuko. Provo Utah Missionary Training Center ke choir is संचालन के संगीत प्रदान करेंगे.
President Dieter F.
Utev Gajagar ke pratham adhyaksha ke dusre salahkar is pratok sabha ki conduct karenge.
We welcome you, brethren, to the
priesthood 180th priesthood session. Ko pradhan Thomas S. Monson, jo is sabha ki adhyaksha kar raha hai, ne kaha ki mujhe is samman ko sanchalan karu. Yeh seva satellite transmission se mil rahi hai duniya bhar mein. Douglas Brenchley और Ryan Eggert के निर्देशन में इस सम्मेलन का संगीत को Provo Utah Missionary Training Center की प्रहिति कायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके साथ ऑर्गन पर रिचर्ड एलियट होगी. इस प्रहिति की सम्मेलन का शुरुआत कायक मंडली के साथ इस गाने द्वारा शुरू करेगी, Hark All Ye Nations. फिर 70 के एल्डर Marcus A. Arikaitis द्वारा प्रार्थना की जाएगी. Thank you.
ये हमारे पिता परमेश्वर, शुरुआत के इस सेशन में हम अपने सर झुकाकर आपको धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रस्तुत के लिए जो हमारे लिए है। ये एक आशीर्वाद है इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे भविष्यवक्ता हमें रास्ता दिखलाता है। इस सेशन के शुरुआत में हम आपसे चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और उन सभी के साथ रहे जो हमें आज सिखलाएंगे, कि आपकी शक्ति से हमें पढ़ाए।
And influenced in our minds.
कि उनके द्वारा हमारे हृदय और मन में आशा पैदा हो कि हम आपके आज्ञा का पालन करें, कि हम आपकी सेवा और अच्छी तरह से कर सके। ये सब ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
The choir will now
sing. अब गायक मंडली गाएगी, Go Ye Messengers of Heaven. गाने के बाद एल्डर रसल एम नेल्सन, जो बारा के परिषद पुरोहित है, संबोधित करेंगे। उसके बाद एल्डर पैट्रिक केरन और वन उसेडा, जो 70 के।
मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के कई भागों में इस शाम हम इकट्ठा हुए हैं। जो फुल टाइम मिशनरीज हमारे मध्य में हैं, वो कृपया खड़े हो जाए।
Wherever you are, elders, mission
presidents, जहां कहीं भी है एल्डर्स, मिशन प्रेसिडेंट्स, प्लीज खड़े हो जाए। हम आपसे आभारी है, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप बैठ सकते हैं। सभी समय हमें याद रखना चाहिए कि क्यों मिशनरीज हमारे साथ है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है जिसने कहा तुम तुम वहां जाओ और सभी देशों को पढ़ाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, पढ़ाते हुए वहां सब चीजों को देखो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, और लो तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ दुनिया के अंत तक। ये आदेश कई में से एक है जो मैंने फिर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह के धर्म सिद्धांत वापस लौट आया है। प्रचारकों को उसी तरह से सेवा कर रहे हैं जैसे उन्होंने नए नियम के समय किया था। एक्स की पुस्तक अपोस्तलों और प्रचारकों के कठिन कार्यों को बतलाता है। टार्सस के सॉल, जो प्रभु का एक महान प्रचारक था, के बदलाव के विषय में हम पढ़ते हैं। एक्स के पुस्तक की आखिरी 15 अध्याय पॉल और उनके साथियों के प्रचारक के कठिन समय का गवाही है। सॉल इसके कारण बदल गया था। पॉल ने फिर तिमोथी को एक पत्र लिखा कि प्रवचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के उदाहरण बनो। ये सलाह हमारे लिए भी लागू है जैसे कि वो उस समय था। ये हमारे मिशनरीज पर लागू है और सभी गिरजाघर के सदस्य को भी लागू है, चाहे हम फुल टाइम मिशनरी या सिर्फ एक सदस्य हो। हम सबको यीशु मसीह के विश्वासी होने का अच्छे उदाहरण होना चाहिए।
$52,000
से ज्यादा फुल टाइम मिशनरीज दुनिया के 340 मिशन्स में सेवा कर रहे हैं। वो ईश्वर के विश्वासी और वफादार नौकर है। उनके लक्ष्य है कि वो दूसरों को मसीह के पास आने के लिए, सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करे, कि वो मदद से विश्वास को यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित पश्चाताप बपतिस्मा पवित्र आत्मा के उपहार को प्राप्त करे और अंत तक झेले। तिमोथी की तरह लगभग सभी फुल टाइम मिशनरीज जवान हैं, कुछ बहने हैं, कुछ एल्डर प्रचारक हैं। हम हर एक को प्यार करते हैं। मिशनरीज परमेश्वर के बच्चों को अच्छा बनाने के लिए सेवा करते हैं। स्वर्ग पिता अपने सभी बच्चों से प्यार करता है क्योंकि वह उनका पिता है। वो उनको आशीर्वाद देना चाहता है जो आनंद जीवन है। मिशनरीज जहां भी सेवा करते हैं वो वहां पढ़ाते हैं। वो प्रभु में विश्वास बनाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं कि वो पश्चाताप करें, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, मंदिर के धर्म विधि को प्राप्त करें और आनंद तक विश्वासी बने रहे। मनुष्यों को अमर जीवन और आनंद जीवन देना परमेश्वर का कार्य है और महिमा है, जो हर मिशनरीज का पवित्र कार्य और महिमा है। हमें और मिशनरीज की जरूरत है और योग्य मिशनरीज। प्रभु ने अपने चेलों को बतलाया, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। पिछले अप्रैल प्रस्तुत की सम्मेलन में हमारे प्रिय प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने गिरजाघर के जवान लड़कों को ये बतलाया, जवान लड़कों, तुम मिशनरी बनने के लिए तैयार हो जाओ।
President
Monson के अच्छे सलाह पर मैं अपने गवाही को जोड़ता हूँ। मेरे परिवार में मैंने एक आशीर्वादों को देखा है जो हर एक प्रचारकों को प्राप्त हुआ है। इस समय तक हमारे बच्चों की गिनती नए आती पोते और उनके आशीर्वाद देना चाहते हैं जो आनंद जीवन है। मिशनरीज जहां भी सेवा करते हैं वो वहां पढ़ाते हैं, वो प्रभु में विश्वास बनाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं कि वो पश्चाताप करे, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा को प्राप्त करे।
Mind and strength. Missionary service.
वो उसी तरह कई पीढ़ियों से पहले परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं। पॉल ने सलाह दिया, हम विश्वासियों के उदाहरण बने। ये सदस्यों पर भी लागू होता है। कई पूरे समय के प्रचारक नहीं है थे और बन भी ना सकेंगे, मगर सभी सदस्य प्रचारक बन सकते हैं। ये निवेदन मुझे एक प्रशिक्षण समय के बारे में याद दिलाता है। प्रचारक के सीखने वाले स्थान पर हर एक बहुत ही बड़ी खेलने वाली स्थान है जहां एक चिन्ह लगा हुआ है। वो कहता है सिर्फ प्रचारकों जो लोग और वो खेला चाहते थे वहाँ अपना चिन्ह लगा दिया। उनके चिन्ह में लिखा था सभी सदस्य प्रचारक है। हर एक विश्वासी के उदाहरण हो सकते हैं। भाइयों, यीशु मसीह के पीछे चलो, चले वालों, तुम सब उनके सिखलाए हुए पर चल सकते हो। तुम्हारे पास शुद्ध हृदय और निर्मल हाथ हो सकता है। तुम्हारे पास परमेश्वर की खुली हुई मूर्ति पर चारे पर तुम्हारे अच्छे कार्य दूसरों के लिए ज्योति होगी। अपने जवाब को गर्म और खुश के बनाओ। तुम उनमें से एक हो सकते हो जो लड़का या लड़की जो उसके मुक्ति और मसीह के धर्म सिद्धांत को समझने के लिए। तुम्हारे पहले जवाब के बाद तैयार रहो दूसरे कदम को बढ़ाने के लिए। तुम अपने दोस्त को गिरजाघर में आने के लिए आमंत्रित करो। तुम्हारे कई दोस्त नहीं जानते हैं कि वो हमारे गिरजाघर में आ सकते हैं। और देखो क्या उद्धारकर्ता ने के निमंत्रण उनके लिए है। उनके बारे में ज्यादा सीखना चाहता है। एक आमंत्रण रविवार को तुम्हारे साथ सहा में जाए। ये तो गिरजाघर के संगठक या सेवा के कार्य में भाग ले। गिरजाघर के सदस्यों की तरह उन तक पहुंचो जो नहीं जानते और उन्हें खुशी से स्वागत करो। हर रविवार को दोस्ती को बढ़ाओ। एक आदमी किसे तुम पहले से नहीं जानते हो, अपनी जिंदगी के हर दिन कोशिश करो अपने दोस्तों को बढ़ाने के लिए। तुम एक दोस्त को आमंत्रित कर सकते हो जो मोमन की धर्म शास्त्र को पढ़ाने के लिए। उन्हें समझाओ कि वो सिर्फ कहानी नहीं है, एक इतिहास किताब नहीं, ये यीशु मसीह की दूसरी गवाही है। उसका लक्ष्य है यहूदियों और गैर यहूदी से बिन जाति वालों को दिखलाते के लिए है कि यीशु ही मसीह है जो आनंद परमेश्वर है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा, मार्मन की धर्मशास्त्र सबसे सही किताब है सभी किताबों से इस धरती पर, और तुम्हारे धर्म का मूल तत्व और मनुष्य परमेश्वर के करीब जा सकते हैं उसको पढ़ने से, ना तो किसी और भी किताब। मार्मन की धर्म यीशु मसीह के पश्चात के बारे में बतलाती है। कई साल पहले मेरे दो साथी, एक नर्स और एक डॉक्टर पति, ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस तरह रहता हूँ। मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मॉर्मन के धर्मशास्त्र सही है। मैंने उन्हें अपने धर्मशास्त्र को दिया, उन्हें पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने मेरे धर्मशास्त्र को लौटा दिया। इज्जत से बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है बहुत धन्यवाद? ये बिल्कुल गलत जवाब है उसने जिसने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है। तुमने इसे पढ़ा नहीं, कृपया इसे वापस ले लीजिए और उसे पढ़े, फिर मुझे मेरे धर्मशास्त्र को लौटा देना। ये कहते हुए कि उन्होंने सिर्फ पन्नों को उल्टा था, उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब वो जा रहे थे, उन्होंने रोते हुए कहा, हमने मॉर्मन के धर्मशास्त्र को पढ़ा है, हम जानते हैं कि वह सच्चा है और हम और जानना चाहते हैं। उन्होंने और भी सीखा और ये मेरी खुशनसीबी है कि वो बपतिस्मा लिया। दूसरा तरीका है कि अपने मित्रों को घर पे आमंत्रित करो कि फुल टाइम मिशनरी आए और उसे सुषमाचार के बारे में बतलाए। पूरे समय के प्रचारक सुषमाचार को बांटने के लिए बुलाओ। तुम्हारे मित्रों तुम्हारे घर पर सहारा और सभी समय विश्वास को देखकर अपने सफर मुक्ति और आनंद जीवन को पन्ने में शुरू कर सकते हैं। धर्मशास्त्र यह बतलाता है कि धरती पर कई और हैं जो सच्चाई से दूर किए गए हैं क्योंकि वो जानते नहीं कहाँ खोजे। क्या वो तुम्हारे लिए मौका नहीं? तुम बन सकते हो वो चेला जो उन्हें मदद कर सकता है ये जानने के लिए। अब इन इंटरनेट के दिनों में वहाँ पर नया और उत्तेजक तरीका है प्रचार करने के लिए। तुम दोस्तों और पड़ोसियों को mormon.org वेबसाइट को देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वेब ब्लॉग्स और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स है तो mormon.org के स्थान को देख सकते हो और वहाँ पर तुम अपने ही व्यक्तिगत प्रोफाइल को बना सकते हो। बाद में और भाषाओं में प्रोफाइल्स है। इस प्रोफाइल से अच्छे के लिए गहरा प्रभाव हो सकता है। 2 महीने पहले एक जवान लड़की जिसका नाम जैक है, एक नया लड़का पाचाला में लुजाना बाटों रोज में एक mormon.org के विज्ञापन को टीवी पर देखा। वो उस वेबसाइट पर गया और गिरजाघर के सदस्यों के प्रोफाइल से जीसस हुआ। हमारे वेबसाइट पर उन पर प्रभाव हुआ। वो गिरजा रविवार को गिरजा में आए। उसे एक सदस्य ने अपने घर शाम के भोजन के लिए आमंत्रित किया। पहले प्रचारक पाठ के बाद 2 हफ्ते से पहले उसने बपतिस्मा ले लिया और गिरजा में आ गया। जैक अभी सुन रहा है। यीशु मसीह के हर सही पीछे चलने वाले सच्चे सदस्य प्रचारक बन सकते हैं। सदस्य और पूरे फुल टाइम मिशनरीज के प्रचारक साथ में कार्य को कर सकते हैं सुषमाचार के आशीर्वाद को प्यारे दोस्तों को पढ़ाने के लिए। वो हम में से हर एक को सच्चे विश्वास के उदाहरण बनाना चाहता है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह है, ये उनका गिरजाघर है, मामन के धर्मशास्त्र सच्चा है, जोसेफ स्मिथ ने ही उसे अनुवाद किया है और इस आखिरी युग का भविष्यवक्ता है, प्रेजेंस थॉमस एस मॉन्सन आज का परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। मैं ये गवाही पवित्र नाम यीशु मसीह से देता हूँ। आमेन।
Tonight I would like to share.
आज की रात में एक संदेश जो धीरज और मुक्ति पर है को बताना चाहूंगा, जो अपने मन या दिल के शांति को दिया हो, यह महसूस करते हो कि वो अपने आखिरी मुख्य को खो चुके, उदारकर्ता के प्रेरणों में सभी मुक्ति और शांति मिलेगी। अरेबियन पेनिनसुला में 7 साल का लड़का रहता था। मुझे हर समय मेरे माता पिता बतलाते थे कि हमेशा जूते पहनना कर रहो, और मैं जानता था क्यों। मैं जानता था कि वो जूते मेरे पैर में राजस्थान में पाए हुए खतरों से। एक सुबह राजस्थान के रात में मैं कैंपिंग के बाद मैं खोज करने जाना चाहता था, मगर मैं जूते नहीं पहना। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक छोटे से सैर के लिए जा सकता था, इसलिए मैंने चप्पल पहन लिए। मैंने अपने को बताया कि ये चप्पल भी जूते हैं एक तरीका में। अभी क्या हो सकता है। जब मैं रेत पर चला जा रहा था, अपने चप्पल में मैंने देखा कि किसी बिच्छू को देखा, महसूस किया। मैंने नीचे देखा तो ये बिच्छू काटा था वह। जब मेरे पीड़े में उंगली से ऊपर आने लगा, मैंने अपने पैर के ऊपर उठा लिया ताकि वो पीड़ा बंद हो जाए। मेरे माता पिता कैंप से दौड़ते हुए आया जब मैंने चिल्लाया। जब मेरे पिता के साथ उसके एक दोस्त ने आया और वो चूसने लगा वो जो जहर था बिच्छू का, इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे माता पिता ने मुझको गाड़ी में रखे और नज़दीकी अस्पताल में ले जाने लगे। जो दर्द मुझको आ रहा था तो वो काफ़ी तकलीफ दे रहा था। जब अंत में मैं अस्पताल पहुंचा, किसी भी तरह डॉक्टर ने हमें बतलाया कि सिर्फ छोटे बिच्छू और जो स्वस्थ नहीं है उनके ही प्रकार के बिच्छू को काटने का दर्द होता है। उसने मुझे एक एनेस्थेटिक लगाया जो मेरे पैर को सून कर दिया और मेरा दर्द चला गया, और 24 घंटे में मेरा ये दर्द चला गया। लेकिन मैं ये सीखा कि मैं जान गया कि जब उन्होंने बताया मुझको जूते पहनने को, तो मुझे फ्लिप फ्लॉप नहीं पहनना चाहिए था। मैं बड़ा हो गया और मुझे ये जानना है कि चप्पल मुझको वो मदद नहीं करता जो, मगर उस सुबह राजस्थान में मैंने जाना ये सब बातें। जब मैं तुम सुर जवान लड़कों को भाषण दे रहा हूँ, तुम्हारे पिताओं नेताओं और मित्रों और देखो कर रहे हो कि ईश्वर को जरूरी हो कि चाहते हैं हमें बनना, मगर मैं गवाही देता हूं कि अपने लड़का होने की अनुभव से कि आदमी की तरह वो नहीं मानना जो सही हो, चाहे कमजोर या खिलाफ हो, हमेशा बेन मगर धार्मिक रहे। जब ये आती है तो हम सुसमाचार को कैसे निभाते हैं। हमें उसके लिए कमजोर और खिलाफ नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के गिरजाघर के संदेश की तरह और प्रोहिती प्रिस्टुट के निभाना वालों, हम जानते हैं कि उन आज्ञाओं का तरीका जो हमें रहना है। जब हम उस रास्ते को चाहते हैं चुनते हैं जो हम जानते हैं कि सही है, जो माता पिताओं नेताओं ने सिखाया है और जो हमारे अपने से पवित्र आत्मा के द्वारा, कभी कभी हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि ये सब भी कर सकते हैं, ये इससे भी ज्यादा, और या हम कुछ बुरा नहीं महसूस करेंगे। हम अपने आप को ये बतलाते हैं कि हम वादा को कभी कभी तोड़ भी सकते हैं और उसे ढूंढने से उसके मुसीबतों से भी झेल सकते हैं। हम मना करते हैं कभी कभी सख्ती से होकर बिल्कुल सही आ गया है, जैसे कहते हैं प्रीच माई गॉस्पल में, मैं और पूरी तरह से प्रभु को मानता हूँ, और भी हम रुक जाते हैं। धर्मशास्त्र हमें बतलाता है कि प्रभु को दिल की जरूरत है, और हमें आज्ञा मिली है कि हम प्रभु से प्रेम करें और उसके सेवा करें। पूरे दिल के साथ। ये वादा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर की समझ साफ खड़ा है और उनके पास लौट जाएगा। मोमन की धरपड़ास में एंटी नीफाई लिहाज ने अपने लड़ाई के अस्त्र को डाल दिया और उसे धरती पर अंदर दफना दिया, वादा करते हुए कि अपने भाइयों के खिलाफ फिर कभी हथियार ना उठाएंगे, कि उन्होंने विरोध ना अस्त्र डालेगा दिया और परमेश्वर और अपने बंदों के विरोध डालना भी बंद कर देगा। उसके बदलाव इतने सफल हुए कि इतने सच्ची थी कि वे कभी भी पाथ बस्ट ना हुए, मगर उनके वतलाप से पहले उनकी स्थिति को याद रखे। वो उसमें से जो रहे थे जिसमें धर्मशास्त्र कहता है परमेश्वर के विरोध उनकी विरोधी दिलों को उनके जिनको कहा दूसरी स्थिति में जैसे प्रतिकार खुशियों, क्योंकि उनके पास था परमेश्वर की स्थिति से दूर चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर जो अपने दिल को कठोर ना करे तो वो उसको वो चंगाई देगा। और प्रभु के सामने जा सकते हैं, प्रभु ने कहा कि हम तुमको चंगाई दे। आश्चर्य मुक्ति का तुलना क्या होने सक करोगे जब हम अपने पापियों के छुपा लेते हैं, या चाहिए घमंड में हो जाता है मुसीबतों से लड़ने के लिए और परमेश्वर के खिलाफ से लड़ते हैं। भाइयों, हमें मुक्ति और सहायक को पाते हुए जब हम अपने आप को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो बड़े डॉक्टर है उसके कदमों में रख देते हैं, हम अपने अस्त्रों को उनके खिलाफ नीचे रख देना चाहिए। फिर वो हमें मुक्ति देगा, फिर वो हमें सभी खतरनाक बुराइयों से बचा सकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र से जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड के आज्ञा से, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रधान जेम्स से प्रवास ने पढ़ाया, जब आज्ञाकारी रहना हमारी लक्ष्य बन जाता है वह जलन नहीं रहती है रुकावट के बजाय आगे बढ़ने का जारी है। जैसे हम सच्चाई को पालन करते हैं वैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक 92 साल के बूढ़ी आदमी से मिला जो वर्ल्ड वॉर टू के कई महान कार्य में शामिल था। वो 3 बार जख्मी होकर बचा था, उनमें से एक था जब वो अपने जीप में जा रहा था उसके स्थान पर बारूदी सुरंग फटी जिसमें घड़ी चलना वाला मर गया। उसने सीखा कि बारूद के सुरंग में उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर तुम्हारा आगे चलने वाली से थोड़ी सी भी ढाई या भाई जाना और कुछ ऐसा होगा जानलेवा। हमारे भविष्यता और पुरोहित नेताओं माता पिता हमेशा बदलाते हैं कि रास्ता हम चलना चाहिए अगर हम अपने आत्माओं को विनाश से बचा सकते हैं। वो जानते हैं कि रास्ते को जो सही है और वो चाहते हैं कि हम उसके पीछे चले। वो वहाँ कई मुसीबतों है फंस और नशीली पदार्थ दारू अश्लील या बुरे चाल इंटरनेट पर और या वीडियो खेल में हमें सीधे एक बर्बादी पर ले जाएगा। अगर हम चलने सुरक्षित कर सके तो वही हमारा धार्मिक जिंदगी से जानलेवा सच्चाई को बतलाता है। अगर हम रास्ते पर चले हम बदल सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम पीछे मत सकते हैं, हम अपने खुशी के वापस, हम ये जानेंगे कि रास्ते से वापस आने पर बारूदी सुरंग हटा दिया गया है। कोई भी सुरंग में शांति नहीं पा सकते। हमें उद्धारकर्ता शांति को राजकुमार है, बड़ा मुक्तिदाता, सिर्फ वही हमें सही तौर पर पापियों के चंगा से बचा सकता है। उसके प्राश्चित में विश्वास ने जो निमंत्रण निफाइटियों को दिया गया है जब उसने उनकी देख किया था जैसे कि मसीह ने कहा तुम्हें कोई ऐसा है जो बीमार है उनको यहाँ लाओ, तुम्हारे पास कोई लंगड़ा लूड़ा है निपंग है घायल है लेप्रसी या कोई जो सुन नहीं सकता, ये जो कोई भी किसी तरह से बीमार है उन्हें यहाँ लाओ और मैं उन्हें ठीक करूँगा। तुम में से किसी ने भी अपने आखिरी मौके को गवा नहीं, तुम बदल सकते हो, तुम वापस आ सकते हो, तुम दया की भीख मांग सकते हो, उसी के पास आओ जो तुमको ठीक कर सकता है और तुम्हें शांति पाओगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
One morning,
एक सुबह एक परिवार धर्म सिद्धांत को हर समय एक तरह पढ़ने के इकट्ठा हुई। जब वह इकट्ठा हुई पिता ने अच्छे स्थित को नहीं महसूस किया। कुछ परिवार के सदस्य उचित नहीं लग रहे थे। उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना किया और जब उन्होंने धर्म सिद्धांत को पढ़ने के को शुरू किया पिता ने देखा कि उसकी पुत्री ने अपने साथ अपनी धर्मशास्त्र को नहीं लाया। उसने उसको आमंत्रित किया कि वो अपने कमरे में जाए और धर्मशास्त्र लाए। उसने वैसे नहीं किया। क्या यह हमें अभी करना जरूरी है? पिता ने अपने आप से ही सोचा कि शैतान बड़ा डर रहा है ताकि वो धर्म सिद्धांत को पढ़ नहीं सके। पिता शांत रहे की कोशिश किया। हाँ हमें यह अभी करना है, उसने कहा। मैं यह अभी नहीं करना चाहती हूँ, पिता ने अपनी शांति को दिया ऊँची आवाज में और कहा यह मेरा घर है और हम हमेशा धर्म सिद्धांत को पढ़ेगा। उसके अंदाज और आवाज के शब्दों के ने पुत्री कष्ट दिया और अपने हाथों में धर्म सिद्धांत को लेकर उसने परिवार को छोड़ दिया। अपने कमरे में दौड़ गई और दरवाजे को जोर से बंद किया। उसी समय परिवार ने धर्म सिद्धांत को पढ़ना बंद कर दिया। कोई शांति और थोड़ी सी भी प्यार घर में महसूस नहीं हुआ। पिता ने जाना कि उसने अच्छा नहीं किया। उसने प्रभु से मदद की भीख मांगी जानते हुए कि उसने अपने की पुत्री का दिल दिखाया। उसने प्रभु के कहा कि वो वही प्यार और शांति को घर में वापस लाए और परिवार को उसी तरह इकट्ठा कर धर्मशास्त्र को वापस पढ़ने के लिए। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसने उसके मन में एक सुझाव आया, जाओ और कहो कि मुझे माफ़ कर दो। उसने प्रार्थना को जारी रखा। प्रभु ने आत्मा को वापस बुलाया अपने घर में। एक बार फिर एक सुझाव आया, जाओ और कहो मुझे माफ़ कर दो। वो एक अच्छा पिता बनना चाहता था और अच्छा करना चाहता था, तो वो खड़ा हुआ और अपने पुत्री के कमरे में गया। उसने कई बार दरवाजे को खटखटाए और जवाब नहीं दिया। जैसे उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अपने पुत्री को उसके खाट पर सिक्त और रोते हुए देखा, वो उसके पास झुक गया और धीमा हुआ और जटिल आवाज से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ वो करने के लिए। और फिर एक बच्चे के जबान से वह पद पढ़ाया ईश्वर ने जो वह उसे पढ़ाना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। उसने पिताजी के ने बेकसूर बच्चे के नहीं हाथों को एक एक बात एकदम सिद्धांत के पहनों को बदलते हुए देखा। प्राकृतिक स्वभाव परमेश्वर के दुश्मन है और आदम के समय से है और रहेगा हमेशा और हमेशा। अगर वो पवित्र आत्मा के फुसलाने से विनम्र और प्राकृतिक स्वभाव का द्वारा किया और प्रभु मसीह के प्रश्चित करने से संत बन गया और बच्चों की तरह आज्ञाकारी विनेद दीन मंचिल प्रेम के पर सभी चीज़ों के देने को तैयार, जिसे प्रभु ने अच्छे समय से उसे के लिए एक बच्चे की तरह अपने पिता को पेश किया। अभी उसी उसके खाट से पास चुके हुए उसने विम्रता को महसूस किया जब उसने अपने आप से सोचा, धर्म सिद्धांत मेरे लिए लिखा गया है। उसने मुझे एक महान उपदेश को सिखाया। फिर उसने अपने आंखों को उसकी ओर किया, कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। उसी समय उसके पिताजी ने जाना कि उसने उस धर्म सिद्धांत के वर्ष को उसके ऊपर नहीं कहा था, मगर उसने उसके अपने ऊपर लागू किया था। उसने अपने बहनों को खोला और उसके जगड़ लिया। प्यार और शांति पुनस्थापित हुआ। परमेश्वर और पवित्र आत्मा के शब्दों से जो मिलाप वापस आया था उस अच्छे समय पर। धर्म सिद्धांत जो उसकी पुत्री ने खुद अपने धर्म सिद्धांत से याद किया था ने उसके दिल को छू दिया पवित्र आत्मा के प्रभाव से। भाइयों, हमारा घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पवित्र आत्मा रह सके। फिर तुम्हारे घर की पवित्र मंदिर के पवित्र से तुलना की जा सकती है। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है हमारे घर में प्रात्रिक स्वभाव लिए। प्राकृतिक स्वभाव तैयार है जो अपने अपराध छुपा लेता है, यह जो अपने घमंड बढ़ाता है, अपने झूठा कार्य को या तो करनों को या शक्ति से ये जबरदस्ती से मनुष्यों के आत्मा पर करता है। और जब वो करता है बुराई की खड़ तक रुक जाओ, स्वर्ग उनसे दूर हो जाती है। प्रभु के आत्मा दुखी हो जाती है और जब वो दूर चल जाती है परंतु ये आत्मा के लिए आमीन। हम जो आयरोनिक ये मलकिज़ेदेक पुरोहित रखते हैं हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी शक्ति या प्रभाव पुरोहितों के सद्गुण को तेज नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ मार्ग से देर तक चलने से, दयालुपन और कोमलता से और अच्छा प्यार से, कृपा से और सही ज्ञान से जो हमारे आत्मा को बहुत बढ़ती है बिना कपर और चाल के। मुसीबतें हमारे घर और जिंदगी से दूर जाती है जब हम यीशु की तरह से रहते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध किया गया अपराधों के भी जमा करेगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई अपने पड़ोसी के अपराधों को पश्चाताप करने पर भी जमा नहीं करेगा। वो स्वयं अपने आप को अपराधित ठहराएगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। प्रभु यीशु मसीह ने जो शांति का राजकुमार है हमें सिखलाता है कि घरों में शांति कैसे लाई जा सकती है। वो हमें आज्ञाकारी होना सिखलाता है, या दूसरे शब्दों में प्रभु के कार्य और शक्ति को उत्पन्न करो, जाओ और कहो मुझे माफ़ कर दो। वो हमें कोमल रहने को कहता है, यह दूसरे शब्दों में बन जाओ, गुस्से से कोमल, नर्म, सुशील, जल्द गुस्से में नहीं या आज्ञाकारी, विनम्र, दूसरों के दबाव से अपने आप को रोक लेना। वो हमें विनीत रहने को कहता है, यह दूसरे शब्दों में निश्चय, सुशील, आज्ञाकारी, इनके खिलाफ घमंड, आदेन, मगरूर या अभिमानी। मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने किया। वो हमें धैर्य रहने को कहता है, ये दूसरे शब्दों में ऐसा स्वभाव जो भर को आनंद तक जेले फसफसाहत या परवाह किए बगैर या शांत रहे जख्मी या अपमानित होने से आनंद तक वो हमें सिखलाता है कि हम प्यार से भरे रहें मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूँ हाँ वो हमें सिखलाता है कि हम प्राकृतिक स्वभाव के ना बने उस पिता की तरह इस कहानी में जिसने ईश्वर से मदद की भीख मांगी है हाँ उसी तरह जिसे उस पिता ने अपनी पुत्री को अपने बहन में प्यार से लिया था तो वैसा ही उद्धारकर्ता अपने बहन को आगे बढ़ाता है हमें लेने के लिए उसे समय जब हम सच्चा प्रश्चित करते हैं वो हमें पढ़ाता है कि हम प्रभु मसीह के प्रश्चित द्वारा संत बन जाए और हम परमेश्वर की अच्छाई के साथ मिलाप करना और हम परमेश्वर की मित्र बन जाए मैं उद्धारकर्ता से प्रश्चित करने के गवाही देता हूँ सच्चाई और शक्ति से साफ करना दोनों का और हमें और हमारे घरों को पवित्र बनाने का जब हम कोशिश करते हैं वो परमेश्वर का महिमा है वो पवित्र और धर्म है और उनका नाम निराला कहा लिया गया है सलाहकार शक्तिमान परमेश्वर अंत तक का पिता शांति का राजकुमार यीशु मसीह के नाम से आमीन
The choir and congregation will
Gaik mandli aur sabha ab gaegi high on the mountain top. Gaane ke baad ye meri khushi hogi ki main tumse baatein karu. Mere bhashan ke baad Pradhan Henry B. Haring jo pehla adhyakshata ke pehla sarkar hai se sunenge.
Thank you.
मेरे प्यारे भाइयों, धन्यवाद इस पुरस्कृत के महासम्मेलन की सभा को दुनिया भर में इकट्ठा होकर देखने के लिए। तुम्हारा आना दिखाता है वादे से भाग लेना, जहाँ कहीं भी तुम हो अपने भाइयों के साथ जो पवित्र प्रस्तुत है। हर समय हम जिंदगियों को मुसीबतों से झोलते हैं कि तुम्हारे मन और दिल में प्रकाशक छोड़ जाती है। वहाँ पर कई एक मुसीबतें हैं मेरी जिंदगी में, उनमें से 1989 में हुआ जब प्रधान एजेंट बेंसन के बातों को सुनने के बाद घमंड से सचेत रहो। मैंने भी पिछले कुछ महीनों में कुछ इस मुसीबतों को महसूस किया था। पवित्र आत्मा के प्रेरणा ने मुझे हिम्मत दिया अपने आवाज़ को प्रधान बेंसन के 21 साल पहले के सदस्यों गवाही की मैं उनकी गवाही दूँ। सभी मरणशील ने कुछ हद तक अनुभव किया है बुराई के घमंड के साथ। कोई से इससे नहीं बचा, कुछ ने प्रयास किया घमंड से। जब मैंने अपनी पत्नी से बतलाया कि ये मेरा विषय होगा करने के लिए, उसने मुस्कुराया, कहा, ये कितना अच्छा है कि तुम इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि तुम इसके बारे में कितना जानते हो। मैं अभी भी प्रधान मोनसन के शक्ति भारी बातों का मजेदार जवाब याद है। जिस समय कुछ समय के लिए गिरजाघर के सदस्यों को स्वीकार करना कठिन हो गया था कहने के लिए कि वो घमंड कर रहे हैं अपने बच्चों या अपने देश या पर, या कि उन्होंने अपने कार्य में घमंड किया। खास शब्द घमंड हमारे शब्द सच्ची से भरे हुए था। धर्मशास्त्र में हम बहुत सारे अच्छे और सच्चे लोगों के उदाहरणों को पा सकते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर ने बोला था, कहा था, जिसमें मैं पसंद करता हूँ, यीशु मसीह के विषय में। अलमान ने आनंद मनाया उस विचार पर कि वो शायद परमेश्वर की मैं साधन बन सकूं। महान प्रचारक एमन ने भी अपने भाइयों के प्रचारकों के सफलता को अनुभव पर आनंद मनाया। मैं जानता हूं कि कुछ चीज़ों पर घमंड करना और घमंड होना दोनों में अंतर है। मैं कई चीज़ों पर घमंड करता हूं। मैं अपने पत्नी पर घमंड करता हूं। मैं अपने बच्चों और नाती पोतों घमंड करता हूं। मैं गिरजा के युवक पर घमंड करता हूँ। मैं घमंड करता हूँ अच्छाई और पसंद होता हूँ। मैं तुम पर घमंड करता हूँ विश्वासियों भाइयों पर। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ परमेश्वर के पवित्र पृष्ठ के लिए खड़ा होने घमंड करता हूँ। तो उसमें क्या अंतर है इस प्रकार के घमंड में जो प्रधान बेंसन ने कहा था? घमंड पापी है, जैसे प्रधान बेंसन ने याद करते हुए पढ़ाया, क्योंकि वो नफरत और विरोध को बनाता है और ये हमें परमेश्वर और भाई बंधों के खिलाफ कर देता है। प्रकृति से घमंड तुलना का पाप है, क्योंकि वो ज़्यादातर से शुरू होता है और देखो मैं कितना निराला हूँ और कितने महान कार्य मैंने किया है, वो हमेशा इसलिए मैं तुमसे अच्छा हूँ से कहता होता हूँ। जब हमारे दिल घमंड से भर जाता है, हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। हम दो महान आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के भक्ति और पड़ोसियों को प्यार करने के अलावा हम अपने भक्ति और प्यार से सही मानते हैं और बतलाते हैं वो परछाई जो हम आईना में देखते हैं। घमंड से खुद को ऊंचा दिखाना बहुत पाप है। वो है बहुत कई लिए एक व्यक्ति रमेतम एक पवित्र स्थान जो जलना लालच और निराशा को सच्चा ठहराता है। एक मैंने में घमंड ही असल पाप है। इस धरती को बनाने से पहले घमंड लूसीफा को घिरा दिया था। अगर घमंड एक इंसान को बुरा बनाए लूसीफा की तरह योग्य और वादा में क्या हमें अपने आत्मा की भी परीक्षण करना चाहिए? घमंड एक तरह का कैंसर है। ये एक पाप है जो दूसरे मनुष्य के कमजोरी तक पहुंचता है। सही में ऐसा भी कह सकता है कि सभी दूसरा पाप तत्व में पाप का परीक्षण है। इस पाप के पास कई आकार है। ये कुछ को अपने ही आत्मलायक को समझने में विरोध करते हैं, सफलता, योग्यता, दान या स्थान। वो इन आशीर्वादों को गिनते हैं शब्दों की तरह, चुनना हुआ, महान या ज्यादा सच्चा दूसरों से। ये इसका पाप है, धन्यवाद परमेश्वर, मैं तुमसे ज्यादा जरूरी हूँ, उसमें प्रसिद्ध और जलने की चाहत। ये अपने आप को महान कहलाने का पाप है। दूसरों के लिए घमंड जलन में बदल जाती है। जिनके पास सच्चे स्थान, ज्यादा योग्यता या ज्यादा दान होते हैं, उनसे ज्यादा उन्हें वो गुस्से से देखते हैं। वो ढूंढते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, कम और दूसरों को नीचे गिराते हुए और लायक नहीं रहे अपने आप को ऊंचा दिखाने में। जब वो जलन करते हैं तो तोड़ कर कहते ये जलते हैं, वे मन ही मन में खुश होते हैं। शायद वहाँ कोई अच्छा स्थान नहीं घमंड के पाप को देखने के लिए दुनिया के खेलों के विरुद्ध बावजूद। मैंने हमेशा प्यार किया है खेल खुद में भाग लेने के लिए और देखने को, मगर मनी माफी मांगता हूँ। वहाँ कुछ ऐसा समय आती है खेल में, ये कैसे हो सकता है कि साधारण तरह और दयालु इंसान छोटे विचार और सलाचन से भरा हुआ अपने विरोध और खेलकूदों और चाहने वालों के संग उन्हें अपने जलन को बड़े समनीय कारण और सभी विरोध दल के जुड़े हुए पर किया, जब कष्ट करता है उनकी पत्रित्रोधी उनके विरोधी के साथ वो खुश होते हैं। भाइयों, भक्तिस्मृति से हम आज भी उसी प्रकार से महसूस और बर्ताव को देख सकते हैं। राजनीति की बातें जान के लिए परंपरा और विश्वास का प्रभाव में। मेरे पृष्ठ के भाइयों, मसीह के प्यारे पीछे चलने वाले सदस्य, क्या हमें अपने आप को बड़े स्थान का नहीं बनाना चाहिए? पृष्ठ के रखने वालों, हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के सभी बच्चे हर एक रंग पहनते हैं। हमारे दल आदमी के बंधुवत है। मरणशील जिंदगी हमारे खेलने का मैदान है। हमारा लक्ष्य है कि हम सीखे परमेश्वर को प्यार करना और उसी प्यार को अपने साथियों के साथ भी। हम यहाँ है कि उसके नियमों के अनुसार जिए और पवित्र परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हम यहाँ है बनाने, आगे बढ़ने के। जब मैं महाअधिकारी नियुक्त हुआ, मुझे आशीर्वाद मिला गिरजाघर के कई बूढ़े भाइयों से शिक्षणों को पाया। एक दिन मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रेसिडेंट जेम्स फाउस्ट को स्टेक सम्मेलन में ले जा सकूं। वो घंटे जो हमने कार में बिताए, प्रधान फोर्स ने समय लिया कि मुझे मेरे कार्य के बारे में बतलाया। उन्होंने बताया कि गिरजाघर के सदस्य कितने उपकारी है, महिमा आदर्श से है। उसने कहा वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, वो तुम पर भरे में तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करेंगे। उसने हंसा और कहा, डेटर, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मगर तुम कभी अपने आप को उसे बुरा असर नहीं होने देना। वो हमारे लिए एक अच्छा पथ है भाइयों। कोई भी नियुक्ति एक जिंदगी के समस्या के लिए, हम अपने स्वास्थ्य, धन, चीजों या स्थान के लिए आभारी है, मगर जब हम अपने कार्य में फंस जाते हैं, जब हम अपने ही जरूरत को देखते हैं शक्ति या इज्जत से, जब हम ये या सोचते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचते होंगे, विश्वास करते हुए कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसी समय मुसीबतें आती है। वो है जब घमंड शुरू हो जाती है। वहां पर कई चेतावनी है घमंड पर धर्म शास्त्र में। सिर्फ घमंड से झगड़े होते हैं, मगर जो अच्छे होते हैं उसके पास बुद्धि होती है। देवदूत पीटर ने चेतावनी दिया, परमेश्वर घमंड को अप्रवाहित करता है और विनम्रता पर उपकार करता है। मोमन ने समझाया, क्योंकि विनित और हृदय के दिन को छोड़कर कोई भी माफ किया नहीं जाएगा, जानबूझकर प्रभु चुनता है। प्रभु ये करता है, दिखाता है देखने के लिए उनका हाथ उनके कार्य में, अगर हम बाहों में विश्वास रखो। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नौकर हैं। हमें प्रस्तुत नहीं मिली कि हम उसे घमंड करें और जो हमने किया है और बढ़ाई को खुशी से प्राप्त करें। हम यहाँ पर हैं कि हम बहुत मेहनत करें। हम यहाँ पर हैं ताकि दुनिया को तैयार करें ताकि प्रभु वापस लौट आए। हम अपने आप की बढ़ाई को नहीं ढूंढते, मगर परमेश्वर की बढ़ाई और महिमा करते हैं। हम जानते हैं कि जो धन हम देते हैं वो कम है, फिर भी जब हम प्रस्तुत के शक्ति को सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर महान और सच्चाई कार्य को आगे बढ़ाएगा हमारे कोशिश के साथ। हम जरूर मौजस की तरह सीखना चाहिए कि आदमी खुद से कुछ नहीं है, मगर परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। भाइयों, हम ऊंची प्रस्तुत को रखे हैं जो पहले से पवित्र प्रस्तुत से जाना जाता। परमेश्वर के पुत्र के आज्ञा के बाद वो परमेश्वर की शक्ति है जो धरती पर आदमियों को दिया गया है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाएं, जैसे उद्धारकर्ता ने लगाया था। घमंड वो है जो प्रस्तुत की शक्ति को भी खत्म कर देता है। विनम्रता वो चाबी है जो उसे दोबारा जला सकती है।
It means that
तो हम इस घमंड के पाप के से कैसे बच सकते हैं जो खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाला है। हम किस तरह और निम्रता बन सकते हैं।
Pride is a switch that turns off priesthood power. Humility is a switch that turns it on.
ये असंभव नहीं कि घमंड में फूले रहे। जब हमारे दिल में दयालुता है, इस कार्य में को कोई नहीं कर सकता जब तक वो विनम्रता और प्यार से भरा हुआ ना हो। जब हम अपने इर्गिर्द दुनिया को देखते हैं मसीह के सच्चे प्यार के प्रभाव से, हम विनम्रता को समझने की शुरुआत को करते हैं। लोग समझते हैं कि विनम्रता अपने आप को दोषी ठहराने से होती है। निम्रता का मतलब नहीं है कि हम अपने आप को दोषी ठहराए कि हम अच्छे नहीं, बेमतलब ये छोटे मूल के हैं। नहीं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर ने जो गुण है हमें दिया है उससे अस्वीकार या उसे स्वीकार करें। हम विनम्रता को अपने आप से कम सोचते हुए नहीं बतला सकते। हम विनम्रता को बतलाते हैं अपने आप को कम में सोचते हुए। वो आती है जब हम अपने कार्य को भाइयों के साथ करते हैं, परमेश्वर और हमारे लोगों की सेवा करने के लिए। विनम्रता हमारे ध्यान और प्यार दूसरों की ओर और स्वर्ग के पिता के कार्य को कराते हैं। घमंड उसके विरुद्ध करता है। घमंड अपने बल और शक्ति को अपने खुद गर्जी के गहराई से दूर करता है। जब हम अपने आप को सताना बंद करते हैं और अपने आप को सेवा से दूर, सेवा हमारी घमंड कम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, वहाँ पर कई लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, और अपने परिवार और पत्नी को ना भूलें। वहाँ पर कई तरीके हैं जिससे हम सेवा कर सकते हैं। हमारे पास कई समय नहीं है कि हम अपने आप में खो जाएं। एक बार मेरे पास एक कलम था जिससे लिखना मुझे बहुत पसंद था। अपने काम पर एक हवाई जहाज के कप्तान की तरह उससे आसानी वो 10 PM के बाद लिखना नहीं गंभीर उसमें या ऊंची विचार भाव से नहीं। फिर उस कलम ने या नहीं कहा कि मुझे सिर्फ जरूरी कामों में के लिए इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो रोज कार्य में। पूरे निर्भरता के साथ मैंने उसे अपने कार्य को निभाया जो मैंने चाहता, चाहे कितने ही बड़ी महत्व नहीं था। वो हर समय सेवा में तैयार था। उसी तरह हम परमेश्वर के हाथों में सदाए हैं। हम शिकायत नहीं करते हैं हमें जो कार्य दिया गया है, हम खुशी से सेवा करते हैं जहां कभी भी हम गए हो जाए। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा जहां उनकी जरूरत होगी। मुझे एज़रा टेफ बेंसन के पवित्र संदेश जो 21 साल पहले दिया गया था, उसके शब्दों में मैं बतलाना चाहता हूँ। घमंड ज़ायन को बनाने के लिए बहुत बड़ा रुकावट है। हमें अपने आप का साथ शुरू करना चाहिए। घमंड को मिटाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के प्रभाव को सुनना चाहिए। प्रकृति भाव को दूर करना चाहिए। प्रभु की मसीह की तरह एक संत बनना चाहिए और बच्चे की तरह दयालु कोमल विनम्रता बनना चाहिए। परमेश्वर विनम्रता के लोगों को, जो अपने आप को विनम्रता से डल देता है, उनसे आशीर्वाद मिलती है। जो कोई भी मजदूरी से बिना है, विनम्रता से होती है। हमें विनम्रता रहने के लिए चुनना है। हम वो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हम वो सब कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, उदारता के पीछे हो लो। ये मेरी प्रार्थना है कि हम जानेंगे और अपने दिलों से पूरे घमंड को निकाल देंगे और हम इससे सच्चाई, ईश्वरीय विश्वास, प्यार, शांति और कोमलता से भरेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आमीन।
This has been a wonderful evening.
I'd like to find a way to say a word to the missionaries who all stood up and who sang.
Do that this evening. I am grateful for this opportunity to be one with you.
मैं इस मौके के लिए आभारी हूँ आपके साथ इकट्ठा होने के लिए। जब परमेश्वर द्वारा समर्थित किया गई है उनकी पुरोहित में सदस्य पाकर हमें नियुक्त किया गया है पिता के बच्चों की सेवा करने के लिए, हम कितनी अच्छा तरह से अपने इस कर्तव्य को निभाते हैं उन पर जिन्हें हम सेवा करते हैं। मैं बहुत श्रद्धा से के साथ दो पुरोहितों सदस्यों को याद करता हूँ जो योग्य परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए उस मिशन पर जिसके लिए प्रभु ने उन नियुक्त किया है। उन दोनों प्रभु के सेवकों ने पहली बार सुसमाचार के बारे में मेरे पूर्व जीवन के कहा था। उनमें से पर्वत एक जीवन लड़की थी जो स्विट्जरलैंड के एक खेत में रहती थी, दूसरा एक जवान पुरुषाता एक आनंद और एक परदेसी जो जर्मनी के नासेस आया था जो और अब सेंट लुइस मिजोरी में रहता था। दोनों एक पुरोहिती सदस्य को पुनस्थापित समाचार की गवाही देते सुना था। महिला ने अपने स्विट्जरलैंड के छोटे घर में आग रखने के स्थान के पास और पुरुष ने अमेरिकन के किराए के हॉल के बालकनी पर बैठे हुए। वो पुरुष और महिला ने बपतिस्मा लेने का चुनाव किया। दोनों वर्षों बाद पहले बार गर्दा वाले रास्ते पर मिले। कई सौ किलोमीटर चलते हुए पश्चिमी अमेरिका के पहाड़ों की ओर उन्होंने चलते चलते बातें की एक चमत्कारी आशीर्वाद के बारे में, एक सारी दुनिया में परमेश्वर के प्रचारकों ने उन्हें ही पाया था और उसे भी चमत्कारी था कि वो जान जाए कि उन प्रचारकों का संदेश सच्चा है। उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली और आत्मा की गवाही के कारण जो उन्होंने पवित्र सदस्यों से सुना था पवित्र आत्मा के प्रभाव में वो अनंतता के लिए बंध गए थे प्रोहिति की शक्ति से। मैं उन 10,000 संताओं में से हूँ उस पुरुष और महिला के जो उन दो प्रोहिति सदस्यों के नाम को समर्पित करते हुए जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव अपने साथ लाया जब वो स्विट्जरलैंड के उस पहाड़ पर खड़े हुए सेंट लुइस के उस सभा में बात करने के लिए। ये कुशाल कहानी और संकरों से जैसे दुनिया भर के आने वाली पीढ़ियों में दोहराया जाता है। कई लोगों के लिए ये उस जवान घरेलू शिक्षक की कहानी होगी जिसने कुछ शब्द कहे जिसे तुम्हारे आज की इच्छा हुई गिरजाघर लौटने के। उन कहानियों में एक सामान्य विषय होगा, वो विषय होगा कि प्रोहितित सदस्य की शक्ति सेवा प्रदान करने वाले और आशीर्वाद देने के जब वो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ था। और इसके साथ मेरे आज रात का संदेश आपके लिए है, आओ हम हो सभी कुछ करें जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ साथी बन सके और फिर हम आगे बढ़ें विश्वास से बिना डर के ताकि हमें वो शक्ति मिले कि हम वो सब कर सकें जो प्रभु कहे। सेवा प्रदान करने की शक्ति है मैं वही बढ़ती आहिस्ता आहिस्ता आएगी, शायद छोटी कदमों में आएगी जिसे देखना कठिन होगा। आज रात मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा जिसे तुम अपने पवित्र सेवा में पवित्र आत्मा के साथ के योग्य बन सको। फिर मैं पवित्र सेवा के कुछ उदाहरण दूंगा जिसमें तुम अपने सेवा करने की शक्ति को देख सकोगे जो आत्मा द्वारा प्रभावित किया जाएगा। हम जानते हैं कि गिरजाघर में पुष्टि करवाना हमें पवित्र आत्मा का उपहार देता है, मगर पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारे जीवन और सेवा में उस उपहार के प्रदर्शन चाहता है कि हम अपने जीवन को सुधारें ताकि हम योग्य हो सके। हम आत्मिक उपहारों को इकट्ठा करते हैं आज्ञाओं का पालन करने से और एक पाप मुक्त जीवन बिताने से। इसके लिए जरूरी है यीशु मसीह में विश्वास पश्चाताप करने के लिए और उनकी पश्चित द्वारा साफ होने के लिए। इसलिए पवित्र सदस्य होने के हमारे भूमिका में हमें कभी अपने पूरे हृदय से प्रभु भोज शुभ में दिया गया आशीर्वाद में भाग लेने का मौका ना खोना चाहिए। क्यों वो तुम्हारा पुत्रन का नाम अपने ऊपर लेने के लिए तत्पर है और उसका सदा याद रखे। जैसे हमें पाप से मुक्त होना है ताकि आत्मा हमारे साथ है, हमें परमेश्वर के समक्ष उनका विनम्र रहना है ताकि हम जान सके हमें उसकी कितनी जरूरत है। उदारकर्ता ने छोड़ने की तैयारी कर रहा था, वो जमीन पर घुटनों पर हुए प्रार्थना के लिए, यह है विवरण। और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की जिसकी उन्हें सबसे अधिक इच्छा थी, और वो सबसे अधिक इच्छा पवित्र आत्मा पाने के करते थे। उन्होंने तुम्हारी तरह बपतिस्मा लिया, और लक्का बतलाता है कि उनकी प्रार्थना के जवाब में वो और सब पवित्र आत्मा और ज्वाल से भर गया। उदारकर्ता ने जोर से प्रार्थना की अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए कि उसके उन लोगों को जिन्हें इसने चुना था को पवित्र आत्मा को दिया था, उनके विश्वास के कारण उन्हें संसार के लोगों में से चुना गया था। फिर उद्धारकर्ता ने एक आत्मिक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने अपने पिता से विनती की, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग ने इनकी बातों पर विश्वास करें सबको पवित्र आत्मा देना। उद्धारकर्ता के विनम्र सेवक होने के नाते हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा की प्रदर्शन हमारे पास रहे। विनम्र प्रार्थना अपने स्वर्ग के पिता से यीशु मसीह में घिरे विश्वास के साथ जरूरी है हमें पवित्र आत्मा के साथ के योजना बनाने के लिए। हमारे विनम्रता और हमारे विश्वास जो आत्मिक उपहारों को आमंत्रित करता है, मैं पढ़ने, अध्ययन करने और धर्मशास्त्र पर विचार करने से पढ़ता है। फिर भी हम शायद कुछ पंक्तियों का पन्नों को हर दिन पढ़ेंगे और आशा करेंगे कि वो पर्याप्त होगा। हम शब्द पढ़ेंगे और शायद समझोगे नहीं, हम अध्ययन करेंगे और धर्मशास्त्र में आकृति और रिश्ता पाएंगे विभिन्न अंशों के बीच। विचार करना मेरे लिए है वो सोचना और प्रार्थना करना अच्छी तरह धर्मशास्त्र को पढ़ने और ध्यान करने के बाद। मेरे लिए प्रधान जोसेफ स्मिथ ने एक उदाहरण दिया कि ऐसे विचार करना परमेश्वर की रोशनी को आमंत्रित करता है। उसे धर्म सिद्धांत और वादे के 138 भाग में पाया जाता है। वो कई धर्म सिद्धांतों को पढ़ रहा और अध्ययन कर रहा था यह समझने के लिए कि उस किसके उदारकर्ता के प्रश्चित का असर उन पर पड़ेगा। उसने कहा कि जब तक वो इस पर विचार कर रहे हैं चीजों पर कि जो लिखा है, उसके समझ की आंखें खुली, प्रभु की आत्मा उस पर आई और उसने मेरे हवाओं को देखा, दोनों छोटे और बड़े। स्पष्टता, प्रार्थना और विचार करना धर्मशास्त्र के बारे में जरूरी भाग है आत्मा के ऊपर के लिए, योगी होने के लिए। हमारे प्रेरितों सेवा में हमारे सेवा प्रदान करने की शक्ति देंगी होगी जब हम विश्वास से अपने नियुक्तियों में आगे बढ़ेंगे पवित्र आत्मा के मदद से। प्रधान मानसून ने हमारे लिए ऐसे कहा, अपनी नियुक्ति के शक्ति को दूंगा करने का क्या अर्थ है? उसका मतलब है उसके गर्व को बढ़ाना, उसे भारी और मजबूत करना, अपनी नियुक्ति के दिव्य स्वभाव को औरों को देखना। और कैसे कोई अपने नियुक्ति को दोगुना करता है? सिर्फ उस सेवा के कार्य को करने से। मैं दो सेवाओं को बारे में बतलाऊंगा जिसे करने के लिए हमने नियुक्ति किया जाता है। इन सेवाओं को आत्मा के प्रभाव में पूरा करने के लिए तुम और अन्य लोग देख सकोगे कि कैसे सेवा प्रदान करेंगे। पहला सेवा है उनके लिए प्रतिनिधि बनना, औरों को सिखलाने और गवाही देने के लिए। प्रभु ने सबसे छोटे और सबसे कम अनुभवी को चुना औरोनिक प्रोहितों में से इस सेवक को प्रदान करने के लिए। नतीचिस नदीकन्नों को बपतिस्म देना, प्रभोज बताने या सर पर हाथ रखना का अधिकार है, बल्कि उन्हें चेतावनी देना, बताना, उपदेश देना है। दुनिया में किसी जगह इस हफ्ते के डीकन को अपने कोरम प्रधान द्वारा किसी कोरम सदस्य जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं को एक सभा में बुलाने के लिए कहा गया, वो 13 वर्षीय प्रधान। तो ऐसा शब्द जैसा चेतावनी देना, बताना और सिखलाना। उस डीकन से जो नियुक्ति प्राप्त करता है, मैं 3 वादे करूंगा। पहले, जैसे तुम मदद के लिए प्रार्थना करोगे, आत्मा तुम्हारे दर को शांत करेगा। दूसरा, तुम्हारे आश्चर्य होगा कि तुम जब उसके घर पहुंचोगे, तुम्हें पता होगा क्या कहना है। जो तुम कहोगे शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर तुम महसूस करोगे कि जो शब्द तुम्हें दिया गया वो उस चैन के लिए उपयुक्त है। और तीसरा, तुम उस प्रभु इस स्वीकृत को महसूस करोगे जिसने तुम्हें नियुक्त किया था। चाहे जो भी, मैं वादा नहीं कर सकता कि सफलता मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मगर प्रभु के लिए जिस डीकन से तुम बातें करोगे, याद रखेगा कि तुम्हें उसके पास आएगा। मैं एक लड़के के बारे में जानता हूँ जो एक पुरुष को गया और वो गिरजाघर गतिविधियों और कार्यों से बहुत दूर है, जिसने बताया 20 वर्ष पहले घटा था, और वह उस डीकन का नाम भी जानता था। आज ने मुझे कहा कि मैं उस डीकन को ढूंढूं और धन्यवाद दूं और सिखलाने का कार्य दिया गया था। एक लड़की एक जीवन का, वो सिर्फ एक दिन था, मगर एक आजा प्रभु को याद है और उसका नाम है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, जवान और बूढ़ा जिन्हें किसी सभी में बोलने का अवसर दिया गया, हमें चतुर शब्दों के शब्द या गहरी सोच की बातें को नहीं इस्तेमाल करना है। आत्मा तुम्हें बोलने के शब्द देगा। परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढ रहे हो, अगर हम प्रभु के लिए बातें करने को कोशिश को जारी रखी, हम आश्चर्य के एक दिन ये जानकर कि हमने चेतावनी दी ही, खुद के किसी भी तरह की शक्ति से भी अच्छी तरह सिखलाने के नियुक्ति के साथ साथ हम सब को प्रभु द्वारा भेजा जाएगा उनकी सहायता करने के लिए जिनको उसकी आवश्यकता है। तुम सीखोगे कि तुम्हें लोगों के चेहरे पर पीड़ा और चिंता पहचाने आसान हो जाएगा। तुम्हारे कोरम के नाम से ये चेहरे तुम्हें याद आएंगे कि उन्हें कोई आवश्यकता है। बिशप को ऐसा महसूस होता है रात में और हर समय जब वो मंच पर खड़ा होते हैं। उनके साथ ऐसा हो सकता है जब वो अपने आप को एक अस्पताल या देखरेख के स्थान के पास जा पाएंगे। मैं जानता था तुम आओगे। मैं चिंता नहीं करना चाहिए कि हम क्या सही करेंगे। परमेश्वर से प्रेम और पवित्र आत्मा शायद प्राप्त होगा। जब मैं एक जवान पुरुष था, मैं दर्द था कि जब मैं ज़रूरतमंदों के पास जाऊंगा, मैं नहीं जानूंगा क्या करना चाहिए। एक बार मैं अपने पिता के स्थल के घाट के पास था जब वो मौत के करीब था। अचानक प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल हमारे कमरे में आया और एक हाथ से की दूसरी और एक दूसरी पर बैठे गए। मैंने सोचा यह मेरा मौका है एक निपुण व्यक्ति को देखने और सुनने के कैसे वो पीड़ित और दुखित लोगों के पास जाता है। प्रधान किम्बल ने शुभकामनाएं बातें पिताजी से पूछा कि क्या उसे पवित्र आशीर्वाद प्राप्त किया है, और फिर जब पिताजी ने कहा भविष्यवक्ता अपने कुर्सी पर बैठा, मैंने उसके सहानुभूति प्रदान करने के गुण को देखने के इंतजार किया और जो मेरे काम थी और मुझे उसकी ज़रूरत थी। 5 या 10 मिनट तक उनके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते देखा। प्रधान किम्बल बोला, हेनरी मैं सोचता हूँ तुम्हें थकने से पहले मैं चला जाऊँ। मैं सोचा कि पद मैंने सीखा नहीं मगर वो बाद में आया। पिताजी ने आहिस्ता कहा, मेरे सभी बैंडकारों ने मैं उसकी बैंड ने मेरी भावनाओं को ठीक किया। प्रजन किम्बल ने सहानुभूति के बहुत शब्द नहीं किए कहे, ये मैंने कहीं सुने नहीं। प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ वो चले थे ताकि वो सहानुभूति पहुँचा सके। मैं अब जान पाया कि वो प्रधान मानसून का पद चाल सिखा रहा है। कैसे कोई अपनी नियुक्ति को दुगना करता है सिर्फ सेवा को प्रदान करने से। यह सच्चा है, सच्चे तुम आत्मा द्वारा सुसमाचार सिखलाने की नियुक्ति पाते हैं जो पवित्र आत्मा के साथ जाते हैं। हमारा पवित्र सेवा मजबूत होगा, लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और स्वर्ग की रहन मौजूद होगी। स्वर्ग की रोशनी हमारे लिए और जिनकी हम सेवा करते हैं उनके लिए वहाँ रहेंगी। हमारे खुद के और हमारे परिवार के मुसीबत पर शायद हमें चिंता हो लगी। प्रेसिडेंट जॉर्ज क्यू कैनन के पास बहुत दुख, विरोध और मुसीबत थे उनके पुरोहित सेवा के वर्षों में। वो शनिवार था उन समय का जब पवित्र आत्मा ने उसका साथ दिया था मुश्किल और कठिन समय। गिरजाघर में और हमारे परिवारों में मेरे लिए वादा सही रहा है जब मैं अपने पवित्र सेवा में आत्मा को महसूस किया है। जब भी अंधेरा हमारे मन पर चढ़ता है हम जान पाती है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंधेरी होती है हम आनंद होती है शांति और खुशहाली के साथ। यह हमारा सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है ताकि सुबह के रात से रात तक और रात से सुबह तक हमारे पास वो आनंद और रोशनी और वो पवित्र आत्मा का हम खुशहाली और आनंद के उस आशीर्वाद की अपेक्षा कर सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि हम परमेश्वर द्वारा नियुक्ति किए गए हैं। भविष्यवाणी द्वारा यह यीशु मसीह का सच्चा गिरजा है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है। परमेश्वर जीवित है। प्रार्थना यीशु की पूर्ण जीवित मसीह है और हमारा उद्धार करता है। तुम जान सकते हो पवित्र आत्मा के शक्ति द्वारा जो तुम्हारे सेवा में मिलेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Brethren, we remind you, your families and your
तुम्हें हम टैबरनेकल क्वायर प्रसारण को कल सुबह 9:30 तक होगी। रविवार सुबह के सम्मेलन तुरंत उसके बाद होगा। हम संयुक्त गायक मंडली का आभार मानते हैं जिसने हमें सुंदर संगीत प्रदान किया। अभी हमारे लिए सही है कि हम अपने प्यारे भविष्यवक्ता प्रदान थॉमस एस मॉन्सन को सुने। प्रधान मॉन्सन के बाद गायक मंडली गाएगी कॉल टू सर्व। एल्डर जेम्स जे हमुला जो 70 के है द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
प्रेस्टुट के मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज रात स्वर्ग पिता की सहायता प्राप्त होने की बातें बताऊंगा मैं जिससे कहने के लिए प्रेरित हुआ। आजकल मैं चुनाव चुनने और उनके परिणामों के बारे में सोच रहा हूं। ये आसान है कि भी चुनाव नहीं करना है। कुछ चुनाव उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते। कुछ चुनाव आनंद जीवन के कुछ भी ताल्लुक नहीं रहते और आने चुनाव की भारी असर पड़ता है आनंद जीवन पर। जब मैंने चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया मैंने उन्हें 3 विभागों में बांटा। पहले चुनाव करने की अधिकार, दूसरा चुनाव करने की जिम्मेदारी और तीसरा चुनाव करने की परिणाम। मैं इन्हें चुनाव करने की 3 आदेश कहता हूँ। पहले मैं चुनाव करने के अधिकार पर बोलूँगा। मैं स्वर्ग के पिता की आभारी हूँ कि उसकी चुनने की शक्ति के उपहार के लिए, यह चुनाव करने की अधिकार के लिए। प्रधान डेविड ओ मके गिरजाघर के 9वें प्रधान ने कहा, जीवन देने के अलावा हमें अपने जीवन को निर्देश करने का अधिकार देना परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया महान उपहार है। हम जानते हैं कि दुनिया के रचने जाने के पहले हमारे पास चुनने की शक्ति थी, और कि लूसिफा ने कोशिश किया कि हमसे ये ले ले। उसको चुनने की शक्ति के आदेश के हम में कोई भरोसा नहीं था, और उन्हें वास किया और उधार हम पर जबरदस्ती लगा किया जाए। उसने तसल्ली दिलाई कि उसकी योजना से कोई भी आत्मा खोएगा नहीं, मगर उन्होंने नहीं देखा कि उसकी परवाह नहीं किया कि इसके साथ साथ कोई भी बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, या बलवान, या ज्यादा सहनशील, या ज्यादा आभारी, अगर उसका योजना अनुसार किया जाएगा। हम जिन्होंने उधारकर्ता की योजना को चुना है जानते हैं कि हम एक खतरनाक कठिन यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि हम दुनिया के कर्तव्यों में शामिल हैं और पाप करते और ठोकर खाते हैं, जिससे हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। मगर पिता के आत्मिक बच्चों के ने अपने को दुनिया पापों के लिए बलिदान किया। पैदा से कर वो महान मुक्तिदाता बना, सभी मनुष्य के उद्धारकर्ता, और इस तरह मुमकिन किया कि हम अपने पिता तक पहुंच जाए। भविष्यवक्ता निफाय हमें बताया है, इसलिए शरीर से मनुष्य स्वतंत्रता है और सभी वास्तु से मानव ही के लिए है, वो उन्हें दिया गया है, और मनुष्य के लिए महान मध्यस्थ के द्वारा वो स्वतंत्र और अनंत जीवन, या शैतान की दास्तान या मृत्यु चुने। मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि शैतान तो यह चाहता है कि सारा मानव समाज उसकी तरह असहीन हो जाए। भाइयों, हम अपने परिस्थितियों के धीरे में हमेशा चुने की अधिकार को पाएंगे। फिर चुनो करने की अधिकार की साथ चुनाव करने की जिम्मेदारी भी मिलता है। हम अकठन नहीं रहते, अच्छे और बुरे की चुनाव में कोई बीच का जगह नहीं है। प्रभु ये जानता है, लूसिफा भी जानता है। जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, लूसिफा और उसके सेवक कभी हमारा आत्माओं को प्राप्त करने की आशा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे स्वर्ग पिता ने हमें हमारे आनंद जीवन के सफर में बिना कोई संतान दिए नहीं भेजा, जिससे हम उनसे परमेश्वर की दिए गए मार्गदर्शन प्राप्त करते और मनशाली जीवन के आनंद में सुरक्षित लौट के लिए। मैं उस धीमे छोटे आवाज की फुसफुसाहट के बारे में बात करता हूँ जो हमारे अंदर है, और मैं पवित्र धर्मशास्त्र के बारे में नहीं बोलता जो वो उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो मरणशाली जीवन की मुश्किलों से गुजर गए थे, जिसे हम अब गुजरना है। हम में इस हर एक यहाँ से धरती पर आए हैं सभी जरूरी औजारों के साथ, जिससे सही चुनाव कर सके। भविष्यवक्ता मरना है हमें बतला है, मसीह की आत्मा हर एक व्यक्ति को इसलिए दिए गए जिससे वे उचित से जान सके। हमें घिरे हुए हैं, कभी कभी अकर्म भी कर होते हैं शत्रु के संतों द्वारा। उनसे कुछ संदेश को सुनो, तुम उन्हें आशीर्वाद पाओगे। ऐसे ही बार करने से कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, किसी पता नहीं चलेगा। तुम दुर्पान कर सकते हो, या शराब पीना, ये नशीली पदार्थ लेना है, सभी कर रहे तो उतना बुरा नहीं है, ऐसा झूठ तो अगणित है। हमारे सफर में हम रास्ते को अलगाव और रास्ते का मुद्दा कर सामना करेंगे. गलत रास्ता लेना बहुत सही रास्ते पर नहीं लौट सकेंगे. लुसिफा बहुत माहिर है धोखा देने में. वो संदेह नहीं करने वाला लोगों को फांस लेता है और उसके चुने हुए सुरक्षित रास्ते से दूर करेगा. प्रेम करने वाले माता पिताओं के सलाह से दूर करेगा. परमेश्वर के सिखाई से दूर सकेगा. वो मानव जाति के सिफर प्रकार लोगों को ढूंढते मगर सबसे परमेश्वर चुने हुए डेविड ने लुसिफा को सुना था सही करने की निर्णय में कमजोर हो गए और फिर वही किया. उसके पास चिन गया राजा डेविड से पहले कैन ने भी वैसा किया था. जूडास इस्करियोट ने उसी बाद में समय की उसके तरीका चलाकी के है उसके शिकार रहने. हम उसके बारे में सेकंड निफाय में पढ़ते हैं. दूसरों को वो संसारिक सुरक्षा में विश्वास दिलाकर शांत कर देगा. वो दूसरों के झूठी प्रशासन करेगा उन्हें बेचता है और उनके कहता कि नरक है ही नहीं जब तक वह उन्हें अपनी भयानक जंजीर में बांध नहीं लेता. इस प्रकार शैतान उनकी आत्माओं को ठेका और चौतराई से सात नरक में ले जाएगा. जब आवश्यक चुनाव सामने आया कैसे हम निर्णय करेंगे? क्या पल भर के मजे में लिए हम राजी हो जाएंगे अपने जोश और शौक के लिए अपने आसपास के अन्य लोग के दबाव में आकर? हम अपने आप उतने अरने ना पाए जैसे एलिस थी लेविस कैरल की माने जाने पुस्तक एलिस इन द वंडरलैंड में. तुम याद करोगे कि वो एक चौराहे पर आई जिसमें दो रास्ते थे हर एक आगे बढ़ता हुआ मगर अलग अलग दिशाओं में. उसे मुश्किल सी बिल्ली से सामना होता है जिससे एलिस पूछती है मैं कौन सा रास्ता लूं? बिल्ली जवाब देती है वो निर्भर है तुम कहाँ जाना चाहती हो. अगर तुम नहीं जानती तुम्हें कहाँ जाना है तब तुम कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी रास्ते में जाओ. एलिस की तरह तो नहीं हम सब जानते हैं कहाँ जाना चाहिए है और फर्क होता है हम किसी रास्ते से जाएं क्योंकि अपना रास्ता चुनने से हम अपनी मंजिल चुनते हैं. हमारे सामने हर वक्त निर्णय होते हैं उन्हें बुद्धिमानी से करने के लिए हिम्मत की जरूरत है. हिम्मत नहीं बोलने का हिम्मत है बोलने का. निर्णय जरूर ताकतवर तय करता है. मैं आपसे विनती करता हूँ उनकी आपकी निश्चय अपनी बना ले इस वक्त उस रास्ते हटे नहीं जो हमें हमारा लक्ष्य तक ले जाएगी हमारे स्वर्ग के पिता के साथ आनंद जीवन. इस सिद्ध और सच्चे रास्ते पर और भी लक्ष्य है प्रचार सेवा मंदिर विवाह गिरजाघर गतिविधि धर्मशास्त्र अध्ययन प्रार्थना मंदिर कार्य वहाँ अनेक योगना लक्ष्य है पहुँचेगा कि जब हम जीवन में सफर करेंगे उनको पूरा करने के लिए हमें वचन बदलना की जरूरत है. अंत में भाइयों मैं चुनाव की परिणाम बुलाऊंगा. हमारे सभी चुनाव के नतीजे होते हैं इनमें कुछ को तो कुछ भी नहीं या कम करने पड़ता है. आनंद उधर के लिए हमें अन्य नित्य है जो तरह से ताल्लुक रहता है. आनंद उधर चाहे तुम एक हरा टी शर्ट पहनो या एक नीला सा आगे चल के उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि जब तुम अपने कंप्यूटर में एक बटन दबाओगे निर्णय करोगे कि तुम्हारे चाल चित्र तक के चाहिए वो तुम्हारे लिए बहुत फर्क लगेगा. तुम उसे समय सीधे सुरक्षित रास्ते से एक कदम नीचे चले जाओगे. अगर कोई दोस्त तुम्हें दबाएगा डालेगा शराब पीने या नशीली पदार्थ के सेवा करने के लिए और तुम उसके दबाव में आ जाओगे तुम उस रास्ते से फिर सही रास्ते पर नहीं लौट सकोगे. भाइयों चाहे हम 12 वर्ष के डिकन है या बालिक हाई प्रिस्ट हमें बहकाया जा सकता है। हम अपने अनेक अपने हृदय को अपने गौर निर्णय को उस लक्ष्य पर टिके रहे जो आनंद और बड़े मूल्य है, उसे बलिदान को छोड़कर जिसके जरूरी हम वहां तक पहुंचे हैं। कोई बहकावा, कोई दबाव, कोई मोह हमें गुमराह नहीं कर सकता जब तक हम उसे मौका ना दे। अगर हम गलत चुनाव करेंगे, हमारे पास और कोई नहीं दोष लगेगा कि खुद की सेवाई। प्रधान ब्रिंगम यंग एक बार इस सच्चाई को बतलाया अपने आप की तुलना करने से। उसने कहा, अगर भाई ब्रिंगम यंग इस गलत रास्ते पर है और स्वर्ग से राज्य के बाहर हो जाता है, कोई भी नहीं पर भाई ब्रिंगम यंग उसका दोषी होगा। स्वर्ग धरती या नरक में नहीं, मैं एक व्यक्ति हूं जिसके दोषी रहेगा। उसने और कहा, ये हर एक अंतिम संतों के लिए है सच है। उधार व्यक्ति कार्यों पर निर्भय है। अपोस्टल पॉल ने हमें आवश्वानी दिया, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मानुष के सोच से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना डालेगा, वहाँ परीक्षा के साथ निकालेगा, रास्ते भी बनाएगा कि तुम से सको। हम सभी ने गलत चुनाव किया है। अगर हमें अभी तक ऐसा चुनाव को सुधारना है, मैं तुमसे आश्वासन देता हूं कि ऐसा करने की तरीका है। इस तरीके का नाम पश्चाताप है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपनी गलतियों को सुधार लो। हमारे उद्धारकर्ता ने जान दी ताकि तुम्हें और मुझे ये अशुद्ध उपहार मिल सके। हालांकि रास्ते आसान नहीं है, वादा तो सच्चा है। तुम्हारे पाप चाहिए लाल रंग के हो, तुम भी वो स्नो की तरह के समान उज्जवल हो जाओगे और मैं प्रभु उन्हें अब याद नहीं रखूंगा। अपना आनंद जीवन दाव पर मत लगाओ। अगर तुम पाप किया है, जितना जल्द तुम अपने मार्ग सुधारो लगो, उतना जल्द तुम अपने मूर्त शांति और आनंद को पाओगे। माफ करने के चमत्कार से मिलता है। भाइयों, तुम एक महान विरासत के हो। हमारे पिता के राज्य में आनंद जीवन तुम्हारा लक्ष्य है। आयशा लक्ष्य एक ही संधारण परिश्रम से नहीं प्राप्त होता है, मगर जीवन भर की धार्मिकता, बुद्धिमान चुनाव की संकथान। लक्ष्य पर गौर करना और परिणाम है। जैसे किसी भी लगवार वास्तु के लिए, आनंद जीवन के इनाम के लिए कुछ खुशी जरूरी है। धर्मशास्त्र है, तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा अनुसार करने में चौकसी रहना है, ना तो ठहिन मुद्दना और ना दैन। जैसे मार्ग पर चलना की आय तुम्हारे प्रभु परमेश्वर ने तुमको कोई दी है, उन सर्ग मार्ग पर चलते रहना। संपत्ति में मैं एक ऐसा व्यक्ति का उदाहरण बताऊं जिसका काम उम्र है। मैं भाई क्लेटन में क्रिस्टेंसन गिरजाघर के एक सदस्य जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस में कारोबार संचालन के एक प्रोफेसर है के बारे में बताऊंगा। जब वो 16 साल का था, भाई क्रिस्टेंसन ने निर्णय किया कि अन्य कार्य में से कि वो रविवार को खेल कूद में नहीं भाग लेगा। वर्षों बाद जब वो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने रहा था, वहाँ उन्होंने बास्केटबॉल टीम में एक जरूरी खिलाड़ी थे। उस वर्ष उन्होंने बहुत विजय प्राप्त हुई। खेल में वो उन्होंने प्रगति ब्रिटिश कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के NCAA टूर्नामेंट जैसा है, वहाँ अपने खेल आसानी से जीते। टूर्नामेंट में वह प्रथम चार टीमों में आए। उस समय भाई क्रिस्टेंसन ने खेल की सच्ची को देखा और उसको बहुत गुस्सा आया। देख देख कर कि खेल रविवार के दिन खेला जाएगा, वो और उसके टीम ने बहुत मेहनत की कि यहाँ तक पहुँचे और वह शुरुआत करने लगा खिलाड़ी था। वह अपने कोच के पास गया अपनी शिकायत के साथ। अब उसके कोच ने कहा कि ब्रदर क्रिस्टेंसन तुमको खेलना है, पर अंतिम खेल में एक सेमीफाइनल खेल होने का था। दुर्भाग्य से ये खिलाड़ी जैसे भाई क्रिस्टेंसन पर और दबाव पड़ेगा कि वो अंतिम खेल खेले। वह अपने होटल के कमरे में गया और घुटनों पर होकर प्रार्थना किया, अपने स्वर्ग पिता से पूछा कि क्या ठीक होगा सिर्फ एक बार अगर वो रविवार को खेल खेले। उसने कहा कि उसके प्रथम खत्म करने के पहले उसके जवाब मिल गया था। क्लेटन, तुम ये क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तुम उसका जवाब खुद जानते हो। वो अपने कोच के पास गया ये बदलाव कि वो अंतिम खेल नहीं खेल पाएगा। फिर वो उस रविवार सुबह में गया और वार्ड में सब की उसका टीम उसका बिना खेला। उसने सफलता के लिए प्रार्थना की, वह जरूर विजय हुई। वो जरूरी कठिन निर्णय 30 वर्ष पूरा लिया गया था। भाई क्रिस्टेंसन ने कहा कि जैसे समय बीतता गया वे उसे निर्णय को सभी निर्णयों से महत्वपूर्ण समझता था। यह कहना बहुत आसान है, तुम जानते हो रविवार को पवित्र रखना सही आ गया है, मगर मेरे हालात कुछ अलग थे और सिर्फ इस बार ठीक रहेगा अगर मैं इस दिन को पवित्र ना रखूं। पर वह कह रहा है कि उसका पूरा जीवन कुछ अलग हो गया है और अगर उस समय वह गलत चुनाव कर बैठता तो अगली बार कोई परिस्थिति आती तो इतना जरूरी होता उसके लिए आसान होता गलत चुनाव करने के लिए। उसके सीखा कि पूरे समय आज्ञा पालन करने आसान है कुछ समय आज्ञा पालन करने की तुलना में। मेरे प्यारे भाइयों, हम आभारी रहें चुनने के अधिकार के लिए, चुनने के जिम्मेदारी को अपने और हमेशा चुनाव करने के परिणाम को ध्यान में रखना। पुरोहित की सदस्य होने के नाते हम जब साथ मिल जाएं, हम अपने स्वर्ग के पिता के रह दिखने वाले प्रभाव के योग्य रहेंगे। अगर हम सावधानी से और सही तरह चुनाव करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य में वास्तव है। हम उन पुराने समय के लोगों की तरह ने उनके नियुक्ति को स्वीकार किया है, हम उसके कार्य कर रहे हैं। हम पवित्र आज्ञा में विजय होंगे। हम प्रभु के पत्रों को ढूंढे वाले अपने को शुद्ध करेंगे। क्या ऐसा ही हो मेरे शांत और विमरण प्राप्त है। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
our beloved Father in heaven.
हमारे प्यारे पिता स्वर्ग के हम आभारी हैं कि हम इस वक्त रह रहे जब भविष्यता है. हम आभारी हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा. हम आभारी हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता के लिए. हम आभारी हैं प्रिस्टुड के लिए जो इसके द्वारा से हमें शक्ति मिला है आपके, ताकि हम आपके कार्य कर सके और आपके नाम से कार्य कर सके. हम आभारी हैं संगीत के लिए जो ये क्वायर है जो हमारे लिए गीत गाया है. हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग की आशीष हम पर रहे और हमारे साथ रहे और हमें राह दिखाए और हमको आगे बढ़ाए, ताकि हम अच्छे पिता बन सके और अच्छा प्रिस्टुड बन सके. हम प्रार्थना करते हैं आपके लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से. आमीन.